ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान और इसराइल पूर्ण संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। संघर्ष विराम अगले कुछ घंटों में प्रभावी होगा। ये घोषणा कल रात कतर स्थित अमरीकी एयरबस पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद की गई। एक रिपोर्ट।
एक बयान में श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों द्वारा अपने अंतिम मिशन समाप्त करने के बाद ये संघर्ष विराम लागू होगा। ये संघर्ष विराम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध विराम की पहल करेगा और 12 घंटे बाद इजराइल युद्ध विराम लागू करेगा। 24 घंटे बाद 12 दिन के युद्ध की आधिकारिक समाप्ति की घोषणा की जाएगी। समाचार कक्ष से मनोज।
हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा है कि ईरान पर इसराइल का हमला बंद होने पर ही ईरान जवाबी कार्रवाई रोकेगा। उधर इसराइल की अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले ईरान ने कतर में अमरीकी हवाई एयरबेस अल उदीद पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। कतर में ये एयरबेस पश्चिम एशिया में अमरीका का सबसे बड़ा सैनिक केंद्र है। ईरान का मुख्य लक्ष्य दोहा के दक्षिण पश्चिम में स्थित ये सैन्य ठिकाना था, लेकिन उसने इराक में एन अल असद बेस को भी निशाना बनाया है। कतर और अमरीका ने कहा है कि हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ है। इस बीच बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात ने अपने अपने वायु क्षेत्र फिर से खोल दिए हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक ईरान से 2,295 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ईरान से निकाले गए भारतीय नागरिक आज मशहद से नई दिल्ली पहुंचे। स्वदेश लौटे नागरिकों ने भारत सरकार और दूतावास को धन्यवाद दिया।
गए थे हम लोग ज्यारत के लिए, जाके परेशान थे, कायदे से लोग लेके यहाँ तक आए और हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हैं,
बहुत मदद की है हर जगह जाने के लिए। बस हर जगह आप लोग टेलीफोनिक सपोर्ट एनी टाइम 24 आवर, अगर जरूरत पड़ रही किसी चीज में क्वेश्चन है तो एम्बेसी सपोर्ट कर रही है।
ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत वायुसेना के विमान ने इसराइल से 165 भारतीय नागरिकों को निकाला है। ये विमान आज सवेरे अम्मान से नई दिल्ली पहुंचा। राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने पर सूचना प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने इन लोगों का स्वागत किया। भारतीय वायुसेना ने भारतीय नागरिकों और मित्र देशों के नागरिकों को निकालने के लिए जॉर्डन और मिस्र से भी मिशन शुरू किए हैं। इसराइल में श्रीलंका के राजदूत निमल बंडारा ने कहा है कि इसराइल में 17 श्रीलंकाई नागरिकों ने भारत सरकार द्वारा संचालित विशेष विमान से यात्रा करने के लिए पंजीकरण कराया है। ये श्रीलंकाई नागरिक कल जॉर्डन के अम्मान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में देश के दो महान आध्यात्मिक और नैतिक गुरु श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ करेंगे। ये श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के सामाजिक न्याय, एकता और आध्यात्मिक सद्भाव के साझा दृष्टिकोण के लिए श्रद्धांजलि है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। श्री डोभाल ने क्षेत्र की समग्र शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की आवश्यकता का उल्लेख किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। ईरान के हमलों के बाद तेल की वैश्विक कीमतों में पिछले 5 वर्षों में एक ही दिन में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है। तेल की कीमतें $5 प्रति बैरल कम हुई हैं और इसमें 6% से अधिक की गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के बाद पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के कारण घरेलू शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत आज मजबूती के साथ हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 634 अंक की बढ़त के साथ 82,530 पर खुला और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 194 अंक का उछाल के साथ 25,166 पर आ गया। लीड्स में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 371 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में इंग्लैंड आज आखिरी दिन बिना किसी नुकसान के 21 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल ऋषभ पंत के 118 और केएल राहुल के 137 रन की बदौलत भारत ने दूसरी पारी में 364 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।